نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد. اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ جب دھوپ نکلتی تو غار کے دائیں یا بائیں جانب سے نکل جاتی، غار کے اندر نہیں پہنچتی. اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک کرامت یہ بتا رہے ہیں، اصحاب کہف جب سو رہے تھے دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ وہ بیدار ہیں. فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، مخاطب تو ان کو بیدار سمجھے گا جبکہ وہ سو رہے تھے. کیوں بیدار سمجھے گا؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور سونے کی حالت میں سانس میں جو تغیر آتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے، وہ بھی نہیں آئی تھی. اور سونے کی حالت میں جو بدن ڈھیلا پڑتا ہے وہ بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ 309 سال سوئے ہیں اور سونے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت بھی ان کے اوپر طاری نہیں ہوئی، لیکن گہری نیند ہی وہ سوئے تھے. آگے ایک دوسری بات بتا رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں جانب کروٹ دے رہے تھے. جیسے سونے والا کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کو سوتا ہے، ایک طرف نہیں سوتا، ایسے ہی اصحاب کہف بھی دائیں اور بائیں جانب کروٹ ہو کر کروٹ کے ساتھ سو رہے تھے. اس طرح سونے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آئے تو یہ سمجھے گا کہ یہ گہری نیند نہیں سویا ہوا ہے. اس لیے کہ جو آدمی گہری نیند سوتا ہے وہ ایک ہی جانب ہو کر سو جاتا ہے. اور کروٹ دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر 309 سال تک ایک ہی جانب سو جاتے تو ظاہر سی بات ہے مٹی ان کو کھا جاتی. ایک ہی جانب اگر آدمی دیر تک سو جائے تو وہ حصہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بھی دے رہے تھے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. اصحاب کہف جب اپنے یہاں سے چلے تھے تو ان کا کتا بھی ان کا ساتھ ہو گیا تھا، اور اصحاب کہف جب اندر جا کر سو گئے تو دہلیز پر ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کیے ہوئے، جیسا کہ کتے کے بیٹھنے کا مشہور طریقہ ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، ایک سوال تو یہ ہے کہ کتا تو ناجائز ہے، اس طریقے سے کتا ساتھ کیوں رہا؟ تو ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے، ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ناجائز نہ رہا ہو، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ کتا کوئی ان کا پالتو کتا نہیں تھا. بے شک کتا پالنا حرام ہے، لیکن اگر کھیت کی حفاظت کے لیے اور کسی اور چیز کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے. چونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی والے تھے تو اب ان کا کتا کھیت والا تھا، اور جیسا کہ کتے کی وفاداری مشہور ہوتی ہے کہ جب اپنا مالک کہیں جاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، ان لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی ساتھ ہو گیا تھا وفاداری میں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان کا کتا دہلیز پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. यहाँ रुक कर एक बात और समझने की है कि अस्हाबे कहफ तो बहुत नेक लोग थे, इंतहाई मुत्तकी लोग थे। अल्लाह ने उन पर बड़ी नेमतें नाजिल की, अल्लाह के इनामात हुए, लेकिन अल्लाह ताला साथ साथ उनके कुत्ते का ज़िक्र भी कर रहे हैं और आगे भी अल्लाह ताला दो तीन जगहों में उनके कुत्ते का ज़िक्र करते हैं। यहाँ से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नेक लोगों की सोहबत का असर होता है, जो नेक सोहबत होती है उसका ज़रूर फ़ायदा होता है, उसका असर होता है। ये लोग नेक थे, कुत्ता इनके साथ हो गया, तो अल्लाह ताला ने क़ुरान में उसका ज़िक्र किया। एक नहीं चार जगहों में अल्लाह ताला कुत्ते का ज़िक्र कर रहे हैं। हालांकि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेक सोहबत का ये फ़ायदा होता है। शेख सादी कहते हैं, सगे अस्हाब कहफ रोज़े चंद पए नेका गिरफ्त मर्दुम शुद, कि अस्हाब कहफ का कुत्ता चंद दिन नेक लोगों के साथ रहा तो उसका ज़िक्र क़ुरान में आ गया। और इधर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों के साथ बैठा तो अल्लाह ने उसे मर्दूद कर दिया। तो बुरी सोहबत का ये वबाल होता है और अच्छी सोहबत का ये बेहतरीन अंजाम होता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, लवित तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारं वलमलित मिनहुम रौबा, अगर आप उनको देखेंगे, अल्लाह ताला ने एक और इंतज़ाम किया कि तुम अगर उनको देखोगे तो डर की वजह से भाग आओगे, यानी उनका पूरी तरह से मुशाहदा नहीं कर सकते और खुलकर देख नहीं सकते। अगर वहाँ देखने के लिए जाओगे, मुशाहदा के लिए जाओगे, तो भाग आओगे और तुम्हारे दिलों में रौब आएगा, दहशत पैदा हो जाएगी, खौफ तारी हो जाएगा। ये भी अल्लाह ने उन पर एक बड़ी नियामत की ताकि कोई उनके करीब ना आए, वो नहायत आराम की नींद सोते रहें, इसलिए कोई उनके करीब ना जाए अल्लाह ने इंतज़ाम किया। और ये बहुत देर तक रहा, जैसा कि इससे पहले बात आई थी, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्ह जब अस्हाब कहफ के ग़ार से होकर निकले तो उन्होंने ग़ार में जाकर देखना चाहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मना किया कि अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को इजाज़त नहीं दी जो तुमसे कहीं बेहतर थे, लिहाजा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। मगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास की बात कबूल नहीं की और उन्होंने चंद आदमी भेजे, जाओ तहकीक करके आओ। जब वो लोग ग़ार के मुंह पर पहुँचे तो अल्लाह ने इतनी सख्त गर्म हवा भेजी, वो वापस वहाँ से आ गए, देख नहीं सके। तो अल्लाह ने उनकी राहत का इतना अच्छा इंतज़ाम किया। आगे फरमाते हैं, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, इसी तरह हमने उनको बेदार किया, बेदार होने के बाद वो आपस में एक दूसरे से पूछने लगे। इसी तरह बेदार किया यानी जिस तरह से 309 साल तक उनका सोना बहुत बड़ी करामत की बात है और बहुत ही ताज्जुब की बात है, इसी तरह से 309 साल के बाद बग़ैर किसी परेशानी के बेदार हो जाना और नींद की कोई बात नहीं रहना, ये भी अल्लाह की कुदरत है, ये भी बहुत बड़ी अजीब बात है। इसलिए फरमा रहे हैं ऐसा अल्लाह ताला की कुदरत के बग़ैर नहीं हो सकता। अब ये लोग बेदार हुए तो आपस में बातें करने लगे। सबसे पहली बात ये हुई, قال قائل منهم كم لبثتم, एक आदमी ने उनमें से पूछा, बताओ तुम लोग कितनी देर सोए, कितनी देर तक सोते रहे। قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, अब वो सात अफराद थे, बाज़ों ने ये कहा पूरा एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम हम सोए हैं, पूरा एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम। अब पूरा एक दिन यानी सुबह से शाम तक, और एक दिन से कम जब वो बेदार हुए थे, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, तो उनका ये कहना था कि हम सुबह के वक़्त ग़ार में दाखिल हुए, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, हम बेदार हो गए हैं, लिहाजा एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। या तो एक दिन मान लिया जाए, और अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि हम बहुत तवील सोए हैं, इसीलिए बाज़ों ने उनसे ये कहा, कालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, भाई इस बहस को छोड़ो, तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है तुम कितनी देर सोए, तुमको सही अंदाज़ा नहीं है, अल्लाह ताला जानता है तुम कितनी देर सोए हो। उनको कुछ अंदाज़ा हो गया कि हम बहुत तवील ज़माना सोए हैं। अब आगे वो बहस पर आते हैं, यानी हकीकत पर आते हैं। वो कहते हैं अब हम भूख लग रही है, लिहाजा खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। फबअसु अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना, किसी एक को, अपनों में से किसी एक को इन पैसों के साथ शहर को भेजो। फलयंजुर अय्युहा अस्का तआमन, वो गौर करे, देखे कि कौन सा खाना पाकीज़ा है। अब वो असल बात पर आए कि खाने का इंतज़ाम होना चाहिए। खाने का इंतज़ाम करने के लिए उनके पास कुछ पैसे भी थे, इसीलिए कह रहे हैं अपने इन पैसों को ले जाए। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आदमी सफ़र में या बाहर अपने साथ जो इंतज़ाम करता है, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि बग़ैर किसी पैसे के और सामान के चला जाना और भरोसा अल्लाह पर रखना, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। अपने साथ अपने सामान का इंतज़ाम होना चाहिए, जैसे अस्हाबे कहफ उस वक़्त कुछ पैसे लेकर गए थे और कहने लगे कि जाओ शहर को। मालूम हुआ वो अपने शहर से चले थे और ग़ार पर आए थे, और करीब में कोई उनका शहर था। अब वो अपने किसी आदमी को शहर भेज रहे हैं। बता दिया गया कि जिस आदमी को भेजा था उसका नाम तमलीखा था, और शहर का नाम, शहर का पुराना नाम अफसूस था, बाद में चलकर इसका नाम तरतूस हो गया। अफसूस ये नाम बुत परस्ती के ज़माने का था, लेकिन जब बादशाह भी नेक और मुसलमान हो गया, लोग भी नेक हो गए, तो उसका नाम बदलकर तरतूस कर दिया गया। अब कह रहा है फलयंजुर अय्युहा अस्का तआमन, के जाने वाला जाए और देखे कि कौन सा खाना पाकीज़ा है। पाकीज़ा है, इससे क्या मुराद है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं हदीस पाक के हवाले से, यानी देखे हलाल खाना कौन सा है। अब हलाल खाने की उनको फ़िक्र है। अब गौर कीजिए, वो ईमान अल्लाह पर लाए थे, अल्लाह ताला आमाले सालिहा की कैसी तौफीक दे रहे हैं, एक एक अमल की उनको तौफीक दे रहे हैं, वो अब हलाल खाने की फ़िक्र कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जाओ देखें कि पाकीज़ा और हलाल खाना कौन सा है। अब हराम खाना बाज़ार में बहुत बिकता था, इसलिए कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये आए हुए थे, बुतों के नाम पर जानवर ज़बह होते थे और वो बाज़ार में फ़रोख्त होते थे, तो इनको फ़िक्र हुई, कहा कि कोई जाए और बाज़ार में हलाल खाना की तलाश करे। वल्यतलत्तफ, लेकिन शोर न करे, काम खुश उसलूबी के साथ, बेहतरीन तदबीर के साथ करें, इसलिए कि अगर ये बाज़ार जाकर हलाल खाने का शोर करेगा तो शुबा हो जाएगा कि ये बददीन लोग हैं, शायद ये वही है जो यहाँ से भाग निकला है, इसलिए गिरफ्तारी हो सकती। इसलिए अल्लाह की तरफ से ये कहा जा रहा है वल्यतलत्तफ, उन्होंने उससे ये कहा कि काम खुश उसलूबी के साथ, बेहतरीन तदबीर के साथ करे। वला युशइरन बिकुम अहदा, और इतनी अच्छी तदबीर करे तुम में से किसी को कोई इत्तिला ना हो। क्यों? अगर इत्तिला होगी तो क्या होगा? कह रहे हैं इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम इरजुमूकुम, अगर वो तुमसे वाकिफ़ हो जाएंगे कि तुम ही वो ग़ार वाले हो, तुम यहाँ से भाग निकलने वाले हो, तो पत्ते पत्थर मार मार कर तुमको ख़त्म कर देंगे। यरजुमुकुम, यानी हो सकता है उस ज़माने में जिस ज़माने के ये लोग हों वहाँ अपने दीन से मुनहरिफ होने की, दीन से बदल जाने की सज़ा पत्थर मारकर कत्ल करने की हो। इसलिए वो कह रहे हैं यरजुमुकुम, पत्थर मार मार कर तुमको ख़त्म कर देंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या इतना दबाव डालेंगे कि तुमको वापस अपने मजहब में जाना पड़ेगा। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, तुमको वापस अपने मजहब में ले जाएंगे। और जाहिर सी बात है वलन तुफ्लिहु इदन अबदा, अगर खुदा ना खास्ता हम अपने मजहब में वापस गए हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। अस्हाब कहफ साफ साफ कह रहे हैं उनके दिल में जो अल्लाह ने तौहीद बिठा दी थी, जो ईमान मजबूत कर दिया तो इतना मजबूत हो गया था कि 309 साल तक सोकर उठने के बाद भी वही ईमान उनके यहाँ मजबूती के साथ कायम है। इसलिए उसकी हिफाजत की फिक्र कर रहे हैं।